ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हा देवी काकुभर गद गद याद्यवाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवत उद्भटारती अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्वे तव गणे गणनम्। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्देकृतेन्दीवरं जड्डञ्जागुदरुचिसं विदधतमपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् दामोदरं भक्त्या विघ्नापराधलक्ष्यै चित्तास्तरंगमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दु तं सर्वभूतहृदयं निमामितुष्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना अतिविज्ञाय राधे तं नैमाम च। यत् किं करेषु बहुश खलु काकुमानि नित्यं परस्य पुरुषस्य सुखण्डमौले जस्या कदारश्निधे विशुभानुजाय ततकेलिपुण्यभवनाङ्गनुमार्जनि। श्रीमद्भागवतम्। कल से यहाँ श्रीमद्भागवत की कथा हुई। आज उसका अभिवास दिवस है। आज हम श्रीमद्भागवत की महिमा के संबंध में संक्षेप में कुछ बतलाने की चेष्टा करूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने द्वादश संवादात्मक श्रीमद्भागवत परीक्षित महाराज जी को सुनाया। सुनाने पर सर्प आया, उनके बाहरी शरीर को तो जला दिया, उसके पहले ही वो भगवत धाम में गोलोक वृंदावन में वो पहुंच गए थे। सर्प उनको कोई भी स्पर्श नहीं कर सका, तनिक भी कुछ स्पर्श नहीं कर सका। सुखदेव गोस्वामी जी जी चले जाने के बाद में या वही सूत गोस्वामी जी उनसे सुने, उस सभा में भी थे, उन्होंने श्रीमद्भागवत की कुछ महिमा बतलाई। कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भागवत की महिमा नहीं इससे बढ़कर। जीवों को ब्रजरस मिलता है, इससे बढ़कर के कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे श्रीमद्भागवत कल्पतरु का अत्यंत प्रपक्व सुंदर मधुर फल है, जिसमें कोई भी हेय अंश नहीं है। तभी वो वंछा कल्पतरु है, जो चाहेगा वही दे देते हैं, जो चाहे कोई मनुष्य। बल्कि स्वर्ग लोक में स्थित जो कल्पतरु हैं, वो कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते, भगवत प्रेम। किंतु श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष सब कुछ देने में समर्थ है। इसीलिए अंत में सुखदेव गोस्वामी जी ने जो कहा, उसी को सुत गोस्वामी जी सनकादि ऋषियों को भी बतला रहे हैं। श्रीमद् भागवतम सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तत्र सामित्रिप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। जिनको ये श्रीमद् भागवत वेद वेदांत श्रुति स्मृति जितने उपनिषद इत्यादि जितने भी हमारे भारतीय वांग्मय हैं, शास्त्र हैं, पीछे से उसमें महाभारत भी आया, रामायण भी आया, उसके अनुगत समस्त जितने भी भारतीय संस्कृति में शास्त्र हैं, सबका सार एक साथ यदि दिया जाएगा तो श्रीमद् भागवत सबका सार। यूं गीता के लिए भी कहा गया है, किंतु उसमें सूत्र है केवल, और श्रीमद् भागवत में विस्तृत रूप में उस सबका वर्णन है। गीता में जो बतलाया गया वो समझ में नहीं लोगों के आएगा, उसमें आत्म अनात्म विवेक उसमें आएगा, क्या चीज आत्मा है क्या चीज अनात्मा है, बस यही ज्ञान थोड़ा सा हो जाएगा। प्रारंभिक पुस्तक है और श्रीमद् भागवत जो है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, गीता समाप्त करने के बाद में तब ये श्रीमद् भागवत है। ये पारमहंसी संहिता है, समस्त वेद उपनिषद का शास्त्र, यहां तक कि वेदांत का सार, गायत्री का भाष्य, वेदों का अर्थ, उपनिषदों के अर्थ को प्रकाशित करने वाला, और महाभारत का भी सार ये गीता है, भागवत है। तो सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रस अमृत तृप्तस्य, उसके रस से जो तृप्त होने वाले व्यक्ति हैं कौन है आगे बतलाएंगे। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम जद वैष्णवानाम प्रियम, वो वैष्णवों के ही प्रिय हैं और किसी के नहीं। स्वार्थ के लिए कोई उसको आदर करे, किंतु वैष्णव लोगों का ये हृदय का धन श्रीमद् भागवत है। अद्वैतवादी मायावादी कर्मी ज्ञानी इन सब के लिए नहीं, ये श्रीमद् भागवत पारमहंसी संहिता है, वैष्णवों का ये सबसे अधिक प्रिय है। तो इसके रस से यदि कोई तृप्त हो गया, कहीं भी उसकी किसी भी शास्त्र में रुचि नहीं रह जाती, किसी भी शास्त्र में रुचि नहीं रह जाती, किसी फल में उसकी रुचि नहीं रह जाती। एक ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ है, इसीलिए वो कहते हैं निम्न गानां यथा गंगा देवानां अच्युतो तथा वैष्णवानां तथा संभव पुराणाम इदम्। जिस प्रकार से नदियों में गंगा, देवों में अच्युत, अच्युत माने कृष्ण, और वैष्णव में जिस प्रकार से संभव श्रेष्ठ हैं, समस्त पुराणों में भी श्रीमद् भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है, सबके चूड़ामणि है। श्रीमद् भागवतम पुराणम जद वैष्णवानाम प्रियम जस्मिन् परमहंसमेकम अमलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्मं आविष्कृतं तत्सुण्वन् सुपर्णं विचारं परो भक्त्या विमुच्यन् नरः। श्रीमद् भागवत अमल पुराण है। अमल माने इसमें मल नहीं है। इसको छोड़कर के जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वो कुछ कुछ मल युक्त हैं, मैलापन उनमें है। जैसे वेद में मलिनता क्या है, उसका यज्ञ, यज्ञ करके सांसारिक फल लेते हैं, स्वर्ग का फल लेते हैं, फिर वहां से गिर पड़ते हैं। इसलिए ये वेद का वेद इत्यादि कुछ मलिन फल वाले हैं। पुराणों में इसको छोड़कर के और जो 17 पुराण हैं, उनमें कुछ कुछ मल है। अतः तो संसारी इत्यादि उसमें फल की भावना रहती है, शरीर के सुख के लिए, शरीर की कामनाओं के लिए उसमें बातें बतलाई गई। शुद्ध आत्मा की बात उसमें कहीं नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत निर्भीक होकर के सत्य बात कहेंगे, किसी को खराब लगे या अच्छा उस पर विचार, उनका कल्याण होना चाहिए। शुद्ध सत्य की बात, सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत सत्यम परम धीमहि, जिसमें मोह्यंत जत सूरय, सूरी लोग अर्थात विद्वान लोग भी, मुक्त पुरुष भी जिसमें मोहित हो जाते हैं, उस विषय को श्रीमद् भागवत बतलाते हैं। यदि सचमुच में एक श्रीमद् भागवत का कोई श्लोक, एक अक्षर भी यदि कोई पालन करे, तो संसार से उपरत होकर के एकदम भगवत प्रेम को जरूर पा ही लेगा। इसलिए यह वैष्णवों के अत्यंत प्रिय ग्रंथ हैं। इसमें मल नहीं है कुछ, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है जो मुक्ति भगवान देते हैं। इस पढ़ने का फल मुक्ति है, इसके पढ़ने का फल सांसारिक सुख है, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे जो पढ़ेगा राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा, एकदम साफ निष्कंटक कह दे। कोई भी शरीर संबंधी कोई लाभ इत्यादि की इसमें बात नहीं, देह में आत्मा का अभिमान करने वाली कोई भी बात नहीं कहेंगे। प्रारंभ से ही जस्मिन परमहंस, जिन्होंने संसार को संपूर्ण रूप से सुखदेव गोस्वामी की भांति, नारद की भांति, जो संसार से एकदम संपूर्ण रूप से अनाशक्त हो गए, तनिक भी कहीं आसक्ति नहीं है, ऐसे महापुरुष जो हैं, जो जदा कदा इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले हैं, ऐसे सुखदेव प्रभु और ऐसे ऐसे लोगों जो पारमहंस हैं, उन्हीं के लिए पारमहंसम एकम अलम ज्ञानम परम। परम ज्ञान क्या है? भक्ति, प्रेम, इसी में यह कहा गया। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं, जब भक्ति जी कर्नाटक में जन्म लिया, दक्षिण भारत में जन्म लिया, प्रादुर्भूत ही जन्म नहीं, प्रादुर्भूत हुई, कर्नाटक में पली पोसी, महाराष्ट्र में बड़ी हुई, और फिर गुजरात में जब गई तो बूढ़ी हो गई, इनके लड़के भी बूढ़े हो गए। उनके लड़के थे ज्ञान और वैराग्य, वो भी अपने इनके खास लड़के नहीं थे, ऐसे लड़के थे दत्तक लिए हुए, गोद लिए हुए लड़के थे। इनका एक ही अपना बेटा है प्रेम, बस और कोई नहीं, अपना खास।
दत्तक क्यों ले लिया?
और दत्तक ले लिया ज्ञान और वैराग्य को, तो ये लोग तो बूढ़े हो गए वहां। फिर वहां से वृंदावन में आई, वृंदावन में वो नई हो गई, किंतु लड़के बूढ़े रह गए, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता, केवल भगवत प्रेम से इनका संबंध होता है। इसलिए इनके लड़के बूढ़े बने रहे ज्ञान वैराग्य, अंत में नारद जी से उनकी वृंदावन में भेंट हुई और नारद जी ने उनको कहा जे मैं इसके लिए उपाय करता हूं। तो वो सनक सनंदन सनत कुमार से चारों भाइयों से मिले और उनसे उपाय पूछा जी इनके लड़के कैसे फिर ये नवजुवक। उन्होंने कहा जैसे श्रीमद् भागवत इसको सुनाइए, जैसे भक्ति जी जो नवज्योति हुई हैं और किशोरी हो जाएंगी और प्रेम रस से भर जाएंगी और ये दो लड़के भी नए हो जाएंगे, भागवत सुनाइए। इसलिए यहां कहा ज्ञान विराट भक्ति के सहित इसमें आविष्कृत हुआ है। वो ज्ञान कैसा, निष्कर्मम ज्ञानम, निष्कर्म ज्ञान जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, निष्कर्म निर्मल ज्ञान जो पारमहंसों के लिए होता है। इसलिए निष्कर्म विशेषण होगा ज्ञान का, निष्कर्म ज्ञान विराग के सहित भक्ति जी इसमें प्रवृद्ध होती हैं। इसके श्रवण करने से जो कृष्ण को भी वशीभूत कर लेती हैं, तत्श्रवण इनका सुनने से विपठन एक श्लोक भी कोई श्रवण करे और की तो बात क्या, पढ़े श्रवण सुने और विचार यदि करे तो संसार से मनुष्य मुक्त होकर के कृष्ण के प्रेम को वो प्राप्त हो जाता है। सहज यहां पर भागवत का महात्म दो प्रकार से मिलता है, एक पद्म पुराण में और दूसरा स्कंद पुराण में। पद्म पुराण वाला साधारण लोगों के लिए, उसमें कुछ गड़बड़ियां मालूम होती हैं, उसमें कुछ उपाधियां हैं, उसमें कुछ मुक्ति इत्यादि का उल्लेख है। किंतु स्कंद पुराण वाला जो है बहुत ही सुंदर है और सिद्धांत मूलक है। हम पहले तो आप लोग साधारण रूप में सुने होंगे इसके संबंध में, वो पद्म पुराण वाला धुंधकारी और ये सब की बातें सब। स्कंद पुराण में कुछ कुछ वैष्णव संबत और शुद्ध उसका कुछ इसमें मिलता है स्वरूप श्रीमद् भागवत का। इसमें से हम कुछ कुछ जानने लायक बातें हम बतलाएंगे, कैसे सुनना चाहिए भागवत, कब इसका होना चाहिए, उसकी तिथियां इत्यादि कब हैं, किस भावना से इसको सुनना चाहिए, सुनने वाले कितने प्रकार के होते हैं, पाठक भी कैसा होना चाहिए और इसका यथार्थ फल और गौण फल क्या है, जैसा उचित है वैसा इसमें वर्णन कर रहे हैं। हम उसमें से थोड़ी बातें कुछ बतलाएंगे। कृष्ण जी अपने लीला में अप्रकट लीला में चले गए। भगवान की लीलाएं अप्राकृत और नित्य होती हैं। साधारण रूप में भगवान की लीलाएं दो प्रकार की मानी गई, एक व्यवहारिकी और एक वास्तविक। वृंदावन ब्रज की जितने भी लीलाएं हैं ये वास्तविक लीलाएं हैं और सृष्टि इत्यादि जगत का व्यापार और उसमें जो हम रह रहे हैं और जो जिसको भोग कर रहे हैं हम और जिस रूप में हैं इसको व्यवहारिक कहा जा सकता है। वो लीलाएं नित्य होने पर भी उत्तम अधिकारी महाभागवत लोग सब समय उसका दर्शन कर सकते हैं, हम सब नहीं दर्शन कर सकते। वो जदा कदा जिस समय में वो प्रकट होती हैं उस समय में उसको लोग दर्शन कर सकते हैं। जैसे कृष्ण लीला के समय अभी 5000 वर्ष पहले कृष्ण की लीला प्रकट हुई थी। प्रकट माने क्या, लीला भी वृंदावन ब्रजमंडल में चल रही है। भगवान की योग माया की शक्ति से हम लोगों के साथ में कुछ संपर्क हो जाने से उस समय लोगों ने उस लीला को देखा किंतु लीला भी चल रही है, उसमें भी चल रही है, पहले भी चलती है। ये नित्य लीलाएं हैं, वास्तविक लीलाएं हैं। और अभी हम जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा विवाद ये सब जो भगवान की ये सब ये बहिरंग माया की लीलाएं हैं। हम लोग इसको यथार्थ समझ लेते हैं, इसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो भगवान की लीलाएं नित्य हैं। कृष्ण चंद्र जी लीला करने के बाद में 125 वर्ष इस पृथ्वी पर अपने लीलाओं के साथ में अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव गोस्वामी जी को सुख के रूप में उनको छोड़ गए थे। अब होने के बाद नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी और ऋषि लोग भागवत की कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। उस समय में जब महाराज युधिष्ठिर पांडवों के साथ द्रौपदी के साथ में स्वर्गारोहण किए, स्वर्गारोहण माने क्या, अर्जुन द्वारका से लौट रहे हैं, बड़े दुखित हो रहे हैं, उस समय में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई, रास्ते में तुम्हें कोई लूट लिया ना किन, अथवा तुमने कोई दुष्कर्म कर दिया, धर्म के विपरीत तुमने कोई काम कर दिया, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों? तो अर्जुन रोने लगे, जिनके वजह से हम लोग विश्व विजयी पांडव कहलाते थे, मैंने अपने धनुष से शंकर जी को भी प्रसन्न कर दिया, ये शरीर ही स्वर्ग में चला गया, देवताओं ने मुझे इंद्र के साथ में आधा स्वर्ग का सिंहासन दे करके बैठा दिया, आज वही मैं अर्जुन, मेरा गांडीव धनुष भी आज मुझसे उठा नहीं, और मैं उनके रानियों को ला रहा था, कृष्ण प्रकट लीला में प्रवेश कर गए और मैं धनुष को उठा नहीं सका, आज वो प्रभु इस जगत से चले गए। उनकी लीलाओं का आदि से अंत तक का वर्णन करते 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 रोते रह गए बेचारे। इसके बाद में युधिष्ठिर ने देखा अब तो कलयुग आने वाला है, आई गया, प्रवेश कर गया, अब हम लोग को आना नहीं चाहिए, बस किसी के से कुछ ना बोल करके घर से निकल गए। पीछे से भीम निकले, उसके पीछे अर्जुन, उसके पीछे नकुल और सहदेव, और उसके पीछे द्रौपदी, सभी लोग पहुंच गए, एकदम हिमालय में चले गए, बैठे हिमालय में चले गए। इधर में कैसे गए, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी, उसके पुत्र अनुरुद्ध जी, उसके पुत्र वज्रनाभ, उस समय छोटे से बालक थे, और परीक्षित महाराज कुछ जुआवस्था में थे। परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया और वज्रनाभ को ले आए मथुरा, और यहां की राजगद्दी बना करके उसमें चारों तरफ में बंद था, यहां पर मथुरा इत्यादि सब द्वादश वन सब जंगलों से भरा हुआ था, कोई चिन्ह भी नहीं था कि कृष्ण की कौन सी लीला कहां पर हुई। उन्होंने इनको यहां का राजा बना दिया और परीक्षित के ऊपर में भार दिया, जे इस बच्चे को तुम संभाल करके और तुम ही इसको देखना, जब बड़ा हो जाएगा इसको अच्छी तरह से छोड़ दे। इसके बाद में जब कुछ दिनों की बात हुई, वो चले गए महाराज परीक्षित और बड़े हो गए, वज्रनाभ अब जुआवस्था में पहुंचे। एक दिन परीक्षित महाराज जी मथुरा में आए, वज्रनाभ जी ने इनका बड़ा सम्मान किया, इनकी मैया रोहिणी इत्यादि थी, 16,000 मेषियां उस समय थी, लोग कहते हैं कि जिसने उनको लूट लिया, अर्जुन ले जा रहे थे, नहीं यहां पर 16,000 महिषियों का ही जिक्र है, वो वहां पर थी,
उन सब में रोहिणी इत्यादि थी। रुक्मिणी जी सत्यभामा तो कृष्ण के साथ में चली गई और जो बाकी थी 16,000 वो यहां पर थी। अब इन लोगों ने भी परीक्षित महाराज जी का आदर किया। परीक्षित महाराज जी इनको बोले, जो कृष्ण ने हमें बचाया, प्राण दिया, मैं उनका ऋणी हूं और हमारे वंश को महाभारत रूपी युद्ध रूपी महासागर से उनको पार करा दिया सहज ही, जिसमें बड़े बड़े मगर थे। कौन? भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये सब पितरे थे। ये लोग विश्व में सबसे बड़े माने हुए थे, इनको कोई भी नहीं हरा सकता था। किंतु कृष्ण की कृपा से हमारे पितामह माने अर्जुन ने कृष्ण की सहायता से ऐसे महासमुद्र को भी अनायास ही बच्छ के पूर में पानी के समान उनको लांग करके चले गए। मैं उन लोगों का ऋणी, बतलाओ तुम्हारा मैं क्या कल्याण करूं। इन्होंने कहा, आप भी हमारे पिता तुल्य हैं। मैं यहां पर आया मथुरा में, युधिष्ठिर महाराज ने मुझे राजगद्दी पर बैठाया, किंतु न यहां कोई प्रजा है, न कोई व्यक्ति है, न कोई चिन्ह कुछ है, जंगल में हमको राजा बना दिया। मेरा मन नहीं लगता यहां। उन्होंने कहा, जाए एक बात करो, मैं तुम्हारे वंश का तारिणी हूं, मैं उसके बदले में कुछ ऋण चुकाना चाहता हूं। एक बात करो, सांडिल्य ऋषि को बुलाओ, वो नंद बाबा के पुरोहित और सब कुछ जानने वाले हैं, उनको बुलाओ और उनसे परामर्श करके तुम्हारा पहला काम यह है कि मैं वहां से हजारों बड़े बड़े धनी मानी बनिए और कुलीन ब्राह्मण, क्षत्रिय और ऐसे ऐसे लोगों को दूंगा जो पहले मथुरापुरी बसाई जाए और सुंदर रूप से उसका निर्माण किया जाए, राजभवन उसमें बनाया जाए। सांडिल्य ऋषि ने उनको जैसा परामर्श दिया, परीक्षित महाराज ने उसी प्रकार से इनसे कह करके वैसा ही कराया। बड़ी सुंदर मथुरापुरी बसी और इंद्रप्रस्थ से हजारों बड़े बड़े धनी मानी अनुभवी बनिए अपनी समस्त सारी सारे धनों के साथ में यहां आए। बड़ी बड़ी विपिनियां स्थापित की, विपिन माने दुकान इत्यादि, बिजनेस आरंभ किया और सब दूसरे जाति ब्राह्मण लोग भी पुरोहित इत्यादि के लिए बुलाए गए। ब्राह्मण लोग यहां पर बसे और दूसरी जातियों के लोग भी बसे। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, गोवर्धन में दीर्घपुर, दीर्घपुर माने डीग, काम्यवन, मथुरा और सब कुछ स्थानों का नाम बतलाए, इन सब में चौकियां स्थापित करें और अपना हेड क्वार्टर बनाए। और महाबन है ऐसे सब स्थानों में और वहां पर धीरे 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 नगर के रूप में बनाए गए। और जहां जहां पर कि कृष्ण की अत्यंत अंतरंग लीलाएं हुई, जैसे वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, काम्यवन, हंडीरवन, लक्ष्मी का बेलवन, फिर मानसरोवर है, द्वादश वन इत्यादि जहां जहां पर है, नंदगांव में भी, बरसाना में, ये सब स्थानों का बहुत विकास किया जाए और अच्छे अच्छे लोग वहां पर बसाए जाए और ऐसा कोई चीज बनाया जाए जो कृष्ण की उसी लीला की उद्दीपना लोगों में हो, जैसे राधा कुंड और श्याम कुंड उन्हीं का बनाया हुआ है। कृष्ण लीला की स्मृति के लिए रस स्वरूप है ना, इसलिए रस स्वरूप उसको बनाया गया। ये कुसुम सरोवर मानस गंगा, पावन सरोवर, बिमला कुंड और जहां जहां पर विख्यात कुंड देखते हैं, ये सब बज्रनाथ प्रभु जी के बनाए हुए हैं। परीक्षित महाराज जी के द्वारा इनको प्रेरणा दे करके सांडिल्य मुनि ऋषि के अनुसार ये सब बनाए गए। उन्होंने कहा, सांडिल्य ऋषि ने, जो देखो भगवान का स्मरण करके तुम जिस स्थान पर जाएगा उसी स्थान पर उस लीला का महात्मा तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति होगी और तुम ठीक उसी तरह से उसकी स्थापना करना। इसलिए जहां जहां पर उनकी लीलाएं हैं वहीं पर, जैसे वृंदावन में गोविंद देव, मथुरा में हरिदेव
केशव देव
और गोवर्धन में हरिदेव और उधर में बलदेव, ये चार देव। इसके अतिरिक्त गोपीनाथ जी, मदन मोहन, बिहारी जी इत्यादि यहां पर सब प्रकाश किए और सब जगहों में जो जो प्रधान प्रधान चीजें हैं वो सब उन्होंने वहां पर सब किया। कहीं पर पाद पीठ किया, कहीं पर मंदिर स्थापित किए, कहीं पर कुछ किया। समस्त ब्रज में जहां जहां कृष्ण की जैसी जैसी लीलाएं थी उनको सब सांडिल्य मुनि और परीक्षित महाराज जी को साथ में लेकर के और उस सबका नादी कृष्ण की उनको घंघरा पहना दिया, कृष्ण को लहंगा चुंदरी ओढ़ा दी और मटके सिर पर दे दिए। मटके देकर के ऊपर में चढ़ गई और वहीं से पत्थर का टुकड़ा मारा वो फूट गया और कृष्ण ने स्नान कर दिया। कहा जे कान पकड़ो, आपसे ऐसा नहीं करेंगे। उनकी चोटी बांध दी पेड़ों में, दुर्गति कर दी और वो तो कान पकड़ करके मधुमंगल कहा जी अब आज से नहीं करेंगे, इससे कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं, इसका के साथ हमारे केवल खाने का संबंध, अब तुम ही लोगों के हम लड्डू लगे उसके दल में जाएंगे ही नहीं। ऐसी सब लीलाएं परब्रह्म होकर के जो लीलाएं कर रहे हैं, इन सब लीलाओं का की स्मृति उन्होंने की, जिसमें सूरी लोग भी मोहित हो जाते हैं, मोहयंत जब सूर्य ब्रह्मा इत्यादि भी मोहित हो जा रही, ये बालक है न पर ब्रह्म है। ऐसे ऐसे लीलाओं का उन्होंने प्रकाश करके वृंदावन में फिर से बसा। ये वृंदावन है, कुछ लोग वृंदावन कहते हैं काम्य वन को, तो काम्य वन कौन सा होगा? काम्य वन गया कहां? यदि यही वृंदावन है तो नहीं, वो काम्य ही वन है। महाप्रभु जी ने भी इसको वृंदावन के रूप में इसकी प्रतिष्ठा की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पीछे से आकर के वज्रनाभ के बताए हुए सब चिन्हों के अनुसार में फिर से संसार में प्रकट किया है इन लोगों को। इसका देन वज्रनाभ जी का और वज्रनाभ जी के वो गुरु सांडिल्य जी का, और इसका बहुत कुछ परीक्षित महाराज जी को इसका ये जाता है। परीक्षित महाराज जी नहीं होते तो ये सब नहीं होता। सांडिल्य ऋषि नहीं यदि बतलाते, क्योंकि उन्हीं के समय के बाद देखा हुआ था, वो नहीं रहते तो स्थान का होता है। अब वज्रनाथ का उत्साह नहीं होता तो ये सब चीजें नहीं होती। अब करें कि उस समय में सबका स्थान जबकि हो गया तो वहां पर जितनी रोहिणी इत्यादि माताएं थीं, उन्होंने सांडिल्य जी से पूछा, इस हम कृष्ण के विरह में बड़ी दुखी हैं, हमारा विरह कैसे जाएगा? उन्होंने कहा जी यदि उधर से किसी प्रकार से आप लोगों का भेंट हो जाए तो ये हो सकता है। क्यों? उद्धव बहुत दिनों तक ब्रज में थे और गोपियों के साथ में थे, तब आप लोगों का शोक ये दूर हो जाएगा। उद्धव जी कैसे मिले? उद्धव जी कैसे मिलेंगे? इसके लिए सांडिल्य ऋषि जी बतला रहे हैं, भागवत कथा के बिना उद्धव जी का मिलना बड़ा कठिन है। जहां पर भागवत की कथा होगी वहां पर प्रकट हो जाते हैं, अन्यथा वो प्रकट ही नहीं होंगे। जहां पर भगवत प्रेम की बातें होंगी वहीं पर वो प्रकट होते हैं। यहां पर करें जैसे वो कैसे प्रकट होंगे, करें हैं सांडिल्य जी कि अभी अभी जो 5000 वर्ष पहले जो भगवान का अवतार हुआ था उसमें 3 प्रकार के भक्त लोग सम्मिलित थे ना, 3 प्रकार के लोग थे। एक तो जो नित्य मुक्त उनके पार्षद हैं, वो लोग नित्य मुक्त पार्षद, वो कृष्ण की लीला में थे, जिनको अंतरंग पार्षद भी कह सकते हैं, ललिता विशाखा चित्रा इत्यादि सब सखियां, नंद बाबा देवकी, नंद बाबा यशोदा मैया और उसी तरह की मैयाएं जितनी थीं, सुबल सिदाम मधुमंगल इत्यादि सखा लोग, ये सब लोग अंतरंग पार्षद भगवान के। उनका कभी न जन्म होता है न मरण होता है, वो नित्य कृष्ण के साथ में लीलाओं के साथ में प्रकट होते हैं, कृष्ण के साथ में वो लोग चले जाते हैं। इन लोगों का कृष्ण से कभी भी किसी भी स्थिति में वियोग नहीं होता, जिसको हम वियोग कहते हैं उस स्थिति में भी उनसे वियोग नहीं होता। दूसरे वो हैं जो साधन कर रहे हैं, साधन से भावावस्था में पहुंचे हैं, वो भावुक भक्त लोग प्रकट लीला में भी थे और इसके बाद में लीला प्रकट हो जाएगी तो भावुक भक्त लोग सिद्ध होकर के उस लीला में चले जा सकते हैं, उनका अधिकार है। वो कृष्ण लीला को कुछ समझ भी सकते हैं। और तीसरी श्रेणी में देवता लोग, देवता लोग भी अंश रूप में, ब्रह्मा जी ने कहा था ना ये देवता लोग अपने अंश से कृष्ण लीला में गोप और सब लोग हों और जदु वंश में उत्पन्न हों और उनकी स्त्रियां राधा जी की सेवा के लिए देवी के रूप में ब्रज के घर में गोप गोपी अथवा जदु वंशियों की स्त्रियों के रूप में वो लोग प्रकट हों कृष्ण लीला में उनकी सेवा करने के लिए। तो ये लोग थे। इसमें से जो देवता लोग जो थे ना, जो अपने अंश से आए हुए थे और भक्तों में प्रवेश किए थे, उनको कृष्ण द्वारकापुरी में भेज दिया मथुरा से चालाकी से। जब ब्रज की लीला समाप्त हो गई और मथुरा की लीला समाप्त हो गई, एक ही रात में एक ही क्षण में सब जितने यहां पर थे सब वहां के विष्णी कुल के और जितने भी थे उनको भेज दिया। ब्रज का कोई नहीं गया, वही लोग है कौन जो देवताओं के अंश थे और वही लोग अंत में मार काट करके बहाने, वो लोग भी मरे नहीं, मार काट के बहाने महा जोग माया का वो खेल दिखला करके और वो देवलोक में अपने फिर स्थान में पहुंच गए ना? और उनमें जो असल थे ना? वो मथुरा से ही चले गए, मथुरा से ही अंतर ध्यान होकर के या ब्रज से ही अंतर ध्यान होकर के चले गए, वो द्वारका नहीं गए, न कृष्ण गए। कृष्ण में कौन गया? वासुदेव गए। और ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर वो कभी भी वृंदावन की सीमा को छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं है, नित्य वही है। उनको देखेंगे कौन? एक तो जो नित्य परिकर अभी जो बतलाया वो, और दूसरे उनको देखेंगे भावुक भक्त कब? जबकि सिद्धि हो जाएगी, वस्तु सिद्धि तब देखेंगे नित्य, और नहीं तो प्रकट लीला के समय उनको देखेंगे। अच्छा, अब वो युद्ध के बाद में सरकंडों से युद्ध करके वो लोग तो चले गए, कौन?
देवता लोग,
देवता वाले। अब जो साधक सिद्ध थे वो कृष्ण के दर्शन से और भक्ति करके वो चले गए। अब जो दूसरे हैं वो वहां पर है नहीं, उनको ब्रज दिखता नहीं, इसलिए ब्रज अभी शून्य सा दिखता है, किंतु कृष्ण की लीलाएं यहां पर अभी भी हो रही है, नित्य लीला यहां पर है, अभी भी वो सब लीलाएं हो रही हैं, किंतु हम साधारण लोग दृश्यमान वृंदावन में प्रकट लीला वाले कृष्ण को और नवभूमि को देखते हैं। यदि कोई अच्छी तरह से इसका सेवन करे तो इसका दर्शन पा सकता है। इसमें सब समय समझो, ब्रज का अर्थ क्या है? ब्रज माने होता है व्याप्ति, व्याप्ति, ब्रज माने व्याप्ति। दो, ब्रजति चलति, ब्रज धातु का अर्थ होता है गम धातु से ब्रज चलता है, जगत माने भी गम धातु से चलता है। ये चलता है कैसे? जगत
विपरीत दिशा
जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयति इत्यादि विनश्यति, इनका छह रूपों में इसका विनाश होता है, विनाश की तरफ में जा रहा है जगत। अभी हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, फिर स्थित हो जाते हैं, फिर इसके बाद में धीरे धीरे घटने लगते हैं और अंत में वृद्ध होकर के अंत में चले जाते हैं। ये सभी चीजों का ये है संसार गम धातु से। अब ब्रज धातु से ब्रजति वो क्रमशः ब्रह्मांड को पार कर, विरजा को पार कर, वैकुंठ को पार कर, द्वारका और मथुरा को पार करके जो चल करके ब्रज में पहुंचित होता है कृष्ण के नित्य धाम को, उसको कहते हैं ब्रज। एक तो ये एक अर्थ जीवों को लेकर के चला जाता है ब्रज में, इधर से लेकर के चलता है उधर से, ये हुआ ब्रज शब्द का। और एक अर्थ है ब्रज माने व्याप्ति, व्याप्ति माने क्या? व्याप्ति माने ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कि व्याप्त न हो, इसको कहते हैं व्याप्ति। सब जगह व्याप्त है। तीन गुणों से अतीत जो ब्रह्म है, कृष्ण ही ब्रह्म है, वो सब जगह व्याप्त हैं अणु अणु में, इसलिए वही एकमात्र ब्रज है। कौन? कृष्ण ही ब्रज है। ब्रज कृष्ण के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है। आराध्यो भगवान ब्रजेश सतम्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना बज बधुर्वर्गे न जा कल्पिता श्रीमद भागवतम पुराण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न पर। कृष्ण जैसे आराध्य है, ब्रजभूमि भी वैसे ही आराध्य है। ब्रजभूमि को कृष्ण समझो, भागवत कृष्ण है, अलग कुछ मत समझो इन लोगों को। वो केवल भेद है स्वरूप का, कुछ देखने का, वही एक ही वस्तु कृष्ण है, वही बलदेव प्रभु धाम बने हुए हैं। कृष्ण और बलदेव अलग नहीं है, वो सर्व व्यापक हैं, इसलिए कृष्ण को ही ब्रज कहते हैं। वो कैसे हैं? परम सच्चिदानंद रूप अविनाशीय रसमय रसो वैसा कृष्ण है। वो रसिक जन कृष्ण को कहते हैं आत्मा राम और आप्तकाम। अब इसका अर्थ समझो, आत्मा राम पहले, आत्मा राम माने क्या? आत्मा में जो रमण करते हैं उनको कहते हैं आत्मा राम। कृष्ण की आत्मा राधा जी है, इसलिए आत्मा राम में और राधा में रमण करने वाले वो जो कृष्ण है वही कृष्ण ही आत्मा राम है। ये सर्वोच्च अर्थ है इसका, रूढ़िगत अर्थ। और जगह कृष्ण रमण करते हैं ये बात ठीक है अणु अणु जीवों में, किंतु ठीक से नहीं, आंशिक रूप में। राधा जी के साथ ही में जो विलास इत्यादि करते हैं, इसलिए राधा जी उनकी आत्मा है, उसमें रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ आत्माराम। दूसरी बात, आप्तकाम, आप्तकाम कौन है? कृष्ण है आत्मारामश्च और फिर आप्तकाम। आत्मकाम माने क्या? काम का अर्थ है अभिलाषा, अभिलाषा पूर्ति होती है प्रेम में ना? इसका अतिरिक्त अभिलाषा और किसी तरह से पूर्ण रूप से नहीं होगी। कोई भी हम कामना करते हैं उसमें सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आनंद की परिसमाप्ति अंतिम स्तर में प्रेम में ही होती है, और वो होगी ब्रज प्रेम में। और वो प्रेम कहां पर सबसे अधिक है? श्रीमती राधिका में, जिनकी कामना राधिका जी में है उसको कहते हैं आप्त काम। आप्त माने पाना, काम माने है अभिलाषा प्रेम, जिसमें कृष्ण अपनी संपूर्ण अभिलाषा प्राप्त करते हैं, किसमें? राधा जी में। इसलिए आप्त काम का यथार्थ तात्पर्य है राधा जी की प्राप्ति की अभिलाषा का नाम आप्त काम। कृष्ण की अभिलाषाएं कहां कहां पर होती हैं? विशेष रूप से गो, गो माने गाय, गो माने गोवत्स, गो माने गोपियां, गो माने गो, गो माने लीला विहार, ये सब गो का अर्थ है। ये सब कृष्ण को नित्य प्राप्त हैं, विशेष करके गोपियां, गोपियों में श्रीमती राधिका, इसलिए कृष्ण को आप्त काम और आप्त आत्माराम उनको कहा जाता है। ये उनके पुरोहित जी सांडिल्य ऋषि बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? देखो, कृष्ण को समझना, ये कृष्ण ही राधा जी हैं और राधा जी ही कृष्ण, ऐसा समझना। क्योंकि राधा जी इस वृंदावन में जोग पीठ में बंसी बट पर कृष्ण के वाम अंग से पैदा हुई, प्रकट हुई। कृष्ण ही वाम अंग से अर्थात राधा जी को उन्होंने प्रकाश किया, इसलिए बामांगी ये है। तो इसलिए राधा जी और कृष्ण ही राधा है, वो कृष्ण है। और उनको बंसी को क्या समझना? दोनों का परस्पर जो प्रेम है यही बंसी है। चंद्रावली क्या है? कृष्ण के चंद्र की नखरू की जो चंद्र है उनमें अत्यंत आसक्त रहने के कारण और उसी में सब समय निराजन करती हैं, इसलिए उनका नाम चंद्रावली हुआ। चंद्रावली माने चंद्र अवली, चंद्र तो एक है और यहां पर चंद्र हैं 20। राधा जी के नखों में और कृष्ण के नखों में उनके ये एक एक जितने हैं वो चंद्र हैं। चंद्रावली जी चरसी चरण में जो 10 5 और 5 नख हैं उसकी जो शोभा है चंद्र, उनकी सब समय निराजन करती है, अपने प्राण कोटि प्राणों को उसने निर्मंचना करती है, इसलिए उनका नाम हुआ चंद्रावली। कृष्ण की जो पत्नियां थीं वो सांडिल्य ऋषि से पूछ रहे हैं, आप ये सब तो बतला रहे हैं किंतु बतलाइए हमारा शोक कैसे जाए? कृष्ण के बिना हमारा जीवन दुर्लभ है, हम लोग बच नहीं रहे, आप कृपा करके बतलाइए। उन्होंने कहा जमुना जी से इसका रहस्य पूछ लो। जमुना जी ही, जमुना जी का दो रूप कृष्ण लीला में विशाखा है और वही द्वारका लीला में कालिंदी है, दोनों एक ही तत्व है। इसलिए विशाखा जी की प्रार्थना जमुना जी की प्रार्थना हो जाती है। विशाखा जी कृष्ण की अत्यंत प्रिया है, यमुना जी सब समय प्रेम के प्रवाह में बहती रहती हैं, बड़ी प्रसन्न रहती हैं। सब लोगों ने पूछा, सब रोहिणी इत्यादि माताओं ने, माता माने इनकी बज्रनाथ जी की, कृष्ण की प्रियाएं द्वारका वाली, ये आप तो बड़ी प्रसन्न रहती हैं, हम लोग बड़ी दुखी रहती हैं, आप बतलाइए क्यों प्रसन्न है। तो उन्होंने बतलाया, यथार्थ में स्वरूपतः उनका वियोग नहीं है, राधा इत्यादि गोपियों का कभी वियोग नहीं है, इसलिए मैं जानती हूं कि हमसे उनका वियोग नहीं है, इसलिए मैं सब समय प्रसन्न रहती हूं। तुम लोग यदि उद्धव मिल जाए तो तुम लोग भी ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे। उद्धव कहां मिलेंगे, तब इसके लिए वो बतला रहे हैं। दो भूमियां हैं, एक साधन की भूमि और एक साध्य की भूमि। वृंदावन साध्य भूमि है, साध्य भूमि माने क्या है, कृष्ण की यहां पर लीलाएं हैं, रसमय लीलाएं चलती रहती, ये साधना का फल प्रयोजन है वृंदावन भूमि। और साधन भूमि बतला रहे हैं उस समय के लिए, अब तो साधन भूमि हो गई है वो नवद्वीप धाम, किंतु इसके पहले के युगों में, इससे पहले बद्रीनारायण बेर के पेड़ हैं, जहां पर व्यास जी ने आराधना की है। इसलिए कृष्ण लीला के बाद में कृष्ण ने कहा, लीला संगोपन से पहले वहीं पर मैत्रेय जी आ गए और वहीं पर उद्धव जी थे, कृष्ण जाने के लिए तैयार, कृपा करके श्रीमद् भागवत का सार महात्मा, कैसे कृष्ण मिलते हैं, ये सब उद्धव संवाद के रूप में उन्होंने बतलाया, जो कि श्रीमद् भागवत के एकादश और द्वादश में, एकादश में ही वो सब वर्णन किया गया। तो करें कि साधना की भूमि है बद्रीनारायण, इसलिए उद्धव जी को कहा था कि आप बद्रीनारायण में चले जाएंगे, और मैत्रेय जी को भी वहीं पर भेज दिया, व्यास जी भी वहीं पर तपस्या किए थे और समस्त वेद उपनिषद इत्यादि का वहीं पर प्रकाश किया था, महाभारत इत्यादि सब वेदांत सूत्र इत्यादि का प्रकाशन किया, अनुभूति की वृंदावन में ब्रज का, ब्रज की लीलाओं का, और यहीं पर वो प्रस्तुत कर दिया श्रीमद् भागवत और लिखा वहां पर, किंतु वास्तविक में बना यहीं पर श्रीमद् भागवत वृंदावन में बेर वन इत्यादि चारों तरफ में है यहीं पर। इसलिए उद्धव जी तो स्वरूप प्रकट रूप में वहां गए, किंतु ब्रज को छोड़ नहीं सकते, इसलिए एक स्वरूप में रहे, कहां, ब्रज में। कृष्ण ने कहा कि नारद कुंड के समीप तू रहना, और कैसे रहना, उद्धव जी ने जो प्रार्थना की, आशाम हो चरण रेणी जुषाम हम श्याम वृंदावने किम गुल लता औषधीना जब दुष्ट जन सुजन आद्य पथम चहित्वा भेजे मुकुंद पद विंशुत भेमृमे ज्ञान। श्रुतियां जो आज तक भी अन्वेषण करके जिस कृष्ण को नहीं पा सकी, कृष्ण को बड़ा भारी पाना बड़ा दुष्कर है, किंतु चुटकी बजाते ही उनको पाया जा सकता है, कैसे, यदि गोपियों की चरण की धूलि का सेवन किए जाए तो, गोपियों के वे ऋणी हैं, जहां चाहे उनको बेच सकती हैं कृष्ण को, हैं? इसलिए श्रुतियां उनको खोज करके नहीं पाती, किंतु कोई साधक यदि गोपियों की चरण की धूलि का आश्रय करे उनको पास। तो उद्धव ने अभिलाषा की थी कि गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए ब्रज में कहीं भी गुल्म लता बन जाऊं और उनकी धूलि पड़ जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए, किंतु मैं तो धूलि कहां की चाहती हूं, कहां का चाहती हूं, कहां का, गोपियां विचार कर रही हूं कृष्ण के पास में मिलने के लिए जा रही हूं रात में, और उस समय उनके चरणों की धूलि, जब प्रेम की उमंग में वो बह रही हूं, देह का सुख बुध नहीं, और कृष्ण से मिलने के लिए जा रही, उस समय कृष्ण उनके चरणों की धूलि हमारे सिर पर पड़ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। किसकी धूली, तब वो प्रार्थना में बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम आदरेणु अफिक्षण सा एक चरण की धूली किसकी, यदि राधिका जी के चरण की धूली मिल जाए। कहाँ रहती हैं राधा जी? राधा कुंड में रहती हैं। राधा कुंड के समीप यहाँ पर नारद जी की तपस्या की स्थली है, जो समस्त प्रेमों के गुरु हैं, जो कि गोपी भाव चाहते हैं। नारद कुंड के पास ही में उद्धव कुंड नाम का एक स्थान है, यहाँ पर भी गोपियों से कृष्ण का दर्शन हुआ था। उद्धव जी भी उस स्थान पर गए थे और वहीं पर गुणलता बन करके अभी तक हैं। उनका असल स्वरूप तो ये ब्रज में है वहां, और एक स्वरूप से वो कृष्ण ने आदेश दिया था इसलिए बद्रिकाश्रम में चले गए, किंतु उनका मन प्राण सब कुछ यहीं पर है। यदि तुम उद्धव को पाना चाहते हो तो उसी स्थान पर चलो। कहां? जहां पर नारद जी का स्थान है, नारद कुंड, उसी के पास ही में कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर के बगल में ही उद्धव कुंड है, वहीं पर गोपियों से उद्धव का संवाद हुआ था और वहीं से उनका आना जाना है। राधा कुंड वहीं से समीप है, कृष्ण से मिलने के लिए राधा कुंड से आ रही हैं। कहां आ रही हैं? उन सब कुंजों में आ रही हैं। उस समय उनकी चरण की धूली की लालसा से वहीं पर हैं, इसलिए वहां पर चला जाए, किंतु सबको दिखाई नहीं पड़ेंगे। अंतरंग भक्तों को या भावुक भक्तों को दिखा दे सकते हैं। कैसे? श्रीमद् भागवत के कीर्तन के माध्यम से भगवान की लीला कथाएं जहां पर वर्णित की गई हैं, और वहां पर उसका खूब सुंदर रूप से सुस्वर से गायन किया जाए और उसमें बड़े बड़े भक्त लोग सम्मिलित हों, तब हो सकता है। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिए, बद्रनाथ जी को उपदेश दिया, तुम जितने भी अच्छे शेष भक्त हैं उनको संग्रह करो, मृदंग खोल करताल इत्यादि के साथ और कृष्ण लीलाओं का वहां पर गायन हो, और उसमें सब लोग तन मन सुख छोड़ करके और कीर्तन में एकदम मस्त हो जाए। उस समय में उद्धव जी बिना आए रह नहीं सकते, उस समय उद्धव के क्या, कृष्ण लीला के जितने परिकर हैं, कृष्ण अपने समस्त परिकरों के साथ में गोप गोपियों के साथ में वहां पर प्रकट हो जाएंगे। आज बड़ी अच्छी बात, बस सुनकर के लोग प्रभावित हैं और बज्रनाथ जी सब लोगों को लेकर के वहां पर उपस्थित हुए। कुसुम सरोवर के पास में वहीं पर नारद कुंड एक तरफ में है, वहीं पर उद्धव कुंड है। हम लोग कभी परिक्रमा करते हैं तो वहां पर जाते हैं, अभी भी कुंड है वो, बद्रनाथ के द्वारा ही वो चिन्हित है कुंड। उसी के समीप में वो भी स्थान है जहां पर कि वो घास बने हुए हैं, प्राचीर के द्वारा उसको रख दिया गया है। कोई कोई विशेष लोग वहां पर जाते हैं। उसी के आसपास में ही श्याम ढाक या क्या कुछ है, श्याम कुटी वहां पर पास में कुछ लोगों ने बनाया था। तो ये सब दुर्लभ स्थान है, ये लोग वहां पर गए जाकर के। आरंभ किया कीर्तन आरंभ करने में, कीर्तन आरंभ करने जब प्रेम में पिघलने लग गए, हाथ उठा करके मृदंग करताल सब लेकर के तन मन की सुधु छोड़ करके एकदम कीर्तन करने लगे, देखा जाए इतने में अर्जुन वहां से उतर आए, देखा जाए इंद्र आ गए मृदंग लेकर के बजाने लगे, अर्जुन नृत्य करने लग गए। अर्जुन नृत्य जानते हैं कि नहीं? कहां से सीखा? अस्पराओं से जाकर के इंद्र के स्वर्ग से वो सब सीखे थे, बल्कि कभी कभी वो नारी बन जाते थे, कभी कभी वो सब कलाओं में पारंगत। अरे देखा प्रहलाद महाराज वहां पर आ गए और वो सब जितने परिकर थे सब लोग आ गए। थोड़ी देर के बाद में उद्धव कुंज से लताओं के बीच से उद्धव जी वहां और कीर्तन में वो भी मस्त हो गए। जब वो मस्त हो गए तो थोड़ी देर में देखा जी अपनी सखियों के समेत राधा कृष्ण जी सब परिकर के साथ में वहीं पर उद्धव एकदम प्रमत्त हो गए सब कीर्तन। थोड़ी देर के बाद में ही कीर्तन जब थोड़ा सा समाप्त हुआ, देखा जैसे कृष्ण चले गए, परिकर चले गए, उद्धव इत्यादि सब लोग चले गए, उद्धव जी का संग हुआ। उन लोगों ने उद्धव जी से फिर पूछा जमुना जी की बात। जमुना जी ने कहा था कि उद्धव का संग होने से तुम्हारा भी शोक दूर हो जाएगा। तो उन्होंने वो सब बतला जो कृष्ण से गोपियों का कभी वियोग नहीं होता, कृष्ण से कभी किसी का भी वियोग नहीं होता है। इस प्रकट लीला में वियोग का भाव दिखाया जाता है, किंतु अप्रकट लीला धाम में वहां पर कुछ समय काल के लिए वियोग होता है, सब समय के लिए वियोग नहीं, जैसा कि इस यहां पर होता है। वहां का काल और यहां के काल में बहुत अंतर है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा समय भी बहुत मालूम होता है, और वहां पर एक मिनट और यहां के लिए हजारों लाखों वर्ष बीत जाता है। इसलिए कहते हैं भागवत का श्रवण यदि कलिकाल में कोई करे तो ऐसे राधा कृष्ण को पा सकता है और उनका वियोग भी दूर हो जाएगा। इसलिए आप लोग भागवत का श्रवण करें, नित्य काल श्रवण करें। जिन लोगों ने मनुष्य जन्म भारतवर्ष में पाया और भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लाभ हुआ, साधुओं का संग मिला किंतु फिर भी भागवत को नहीं श्रवण किया तो उनका जन्म वृथा गया। जो लोग भागवत का श्रवण करते हैं अपने कुल का भी उद्धार कर देते हैं, अपना तो होता ही है, सकुलम पुनाति, अपने कुल को भी वे क्रम पवित्र कर देते हैं। इसके द्वारा कर रहे हैं भागवत के स्वाध्याय से या श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश होता है, विद्या भागवतावधि, विद्या का प्रकाश। क्षत्रिय लोग यदि सुने तो शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है, और शूद्र लोग स्वस्थ और निरोग बनते हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। स्त्रियां और अंतर जाति के लोग जो हैं, कोई भी इच्छा इनकी हो भाव के द्वारा परिपूर्ण हो जाती है। लौकिकी परोक्ष रूप में स्वर्ग इत्यादि की, मुक्ति की, भक्ति की, प्रेम की, सबकी, क्योंकि ये पांचा कल्पतरु है, निगम कल्पतरु है, इसलिए पूर्ण कर। इसलिए कौन ऐसा सौभाग्यवान पुरुष है जो भागवत का सेवन न करेगा, जरूर करना चाहिए उन लोगों को। इसकी दो परंपराएं बतलाए, कल ये सब बतलाएगा बच्चा। एक हुआ नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी के रूप में दिया, उन्होंने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने